अभी हमारे बीच आदरणीय आशा दीदी जी, आप जानते हैं ना आशा दीदी को? देखिए इतने सब जानते हैं और जितना मैं बताऊंगी उससे ज्यादा ही जानते होंगे, क्योंकि बहुत बड़ा दिल्ली का ही ग्रुप आया है, माताओं का बहुत बड़ा ग्रुप है दिल्ली का और गुजरात का, बाकी सब जगह से तो थोड़े थोड़े भाई बहन माताएं आई हैं। तो आप सभी बहुत बहुत लक्की हैं, स्पेशल सुबह आए शाम को चले जाएंगे। बताइए इतने शॉर्ट विजिट पे आपने खींचा है आशा दीदी को। कहने को निमित्त मात्र आजकल ओआरसी में दीदी सेवा दे रहे हैं, लेकिन सारे विश्व में आपका सिक्का चलता है। बहुत प्यार से सभी कन्याएं विशेष याद करती हैं, क्योंकि बहुत मर्यादा पूर्वक बहुत अच्छी ट्रेनिंग भट्टी कन्याओं की होती है, तो यहाँ भी दीदी का बहुत स्पेशल रोल रहता है। ओआरसी में भी कन्याओं की बहुत अच्छी ट्रेनिंग और भट्टी चलती ही रहती है, हर साल होती है, तो बहुत दिलों पर छाप छोड़ते हैं जो बनने, नई टीचर्स जो बनने वाली हैं। तो हमारे बहुत बहुत अच्छे दीदी हैं आशा दीदी, जो सभी के अंदर दिल शिकस्त आत्माओं में, परेशान आत्माओं में, थोड़ा सा बुझी बुझी सी आत्माओं में आशा की किरण जगाते ही हैं। तो आशा दीदी, बचपन से इनके परिवार, माता पिता सब बाबा के संपर्क में आए, आप अपनी छोटी उम्र से ज्ञान में हैं, किशोर अवस्था से, और पूरे परिवार ने बाबा के साथ रहकर सेवा करना, लाइट हाउस माइट हाउस बनकर सारे विश्व में ज्ञान की रोशनी फैलाना सीखा और फिर ये प्रैक्टिकल करते जा रहे हैं। आप एडमिनिस्ट्रेटर विंग के चेयरपर्सन हैं और देश में और अनगिनत विदेशों में आपने अपनी रूहानियत से, अपनी अनुशासित और मर्यादा पूर्वक जीवन से सबको बहुत अथाह प्रेरणाएं दी हैं। माताओं के लिए आपके दिल में क्या है कि माताएं बीती बातों को भूलती नहीं है और फिर याद करके रोती रहती हैं। ज्ञान में चल रही हैं, लेकिन 30 साल पहले शादी हुई थी तब किसी ने इंसल्ट की थी, वो बात भी याद रखती हैं। तो दीदी पक्का कराएंगे नथिंग न्यू, क्या नथिंग न्यू की स्मृति और बेहद की वैराग्य वृत्ति क्या होती है, हमारे आदरणीय आशा दीदी आपको समझाएंगे। हर बात पल्ले बांध कर लेकर जानी है। तो अभी आदरणीय आशा दीदी जी से हम सुनेंगे जो कि हमारे दिल के अंदर क्या बातें लग गई हैं, वो फिर आप अनुभव में भी कल सुनाएंगे क्या परिवर्तन करना है विशेष वो। आदरणीय आशा दीदी जी,
ओम शांति। आज का टॉपिक, बहन कह रही थी कि माताएं बात को भूलती नहीं है, कुछ हो जाता है तो पुरानी याद रहती है, 30 साल पहले ये हुआ। तो भूलना कोई गलत बात तो नहीं है, भूलना चाहिए। फिर डॉक्टर कहेगा इसकी मेमोरी टेस्ट करो, कुछ गड़बड़ है, इसको बात याद नहीं रहती है, भूल जाती है। अगर कोई व्यक्ति बात भूल जाता है तो आप लोग क्या कहते हो, इनको आजकल कुछ याद नहीं रहता, ये भूल जाते हैं, तो वो तो गड़बड़ बात हो जाएगी, दिमाग की कमजोरी मानी जाएगी। तो भूल क्या हुआ, आवाज नहीं आ रही है? अभी आ रही है, पीछे आवाज आ रही है तो हाथ खड़े करो, आ रही। तो मैं कह रही थी कि भूलना तो कमजोरी होती है, अगर कोई व्यक्ति बात भूल जाए तो हम क्या कहते, तुमको इतनी भी बात याद नहीं, भूल गए। कहते हैं ना, तुम भूल जाते हो, आपको कुछ याद नहीं रहता है। तो आजकल टैबलेट्स मिलती हैं जिससे मेमोरी तेज हो जाए, भोज्य पदार्थ बताते हैं ये खाओ तो मेमोरी अच्छी रहेगी। तो मेमोरी तो अच्छी रहनी चाहिए, स्मृति तो अच्छी रहनी चाहिए, फिर क्या करना है? इसका ऑल्टरनेटिव क्या है? आप कहेंगे बहन जी भूलो नहीं, तो क्या करो? इसका उत्तर बाबा ने दिया है, मुरली में ही दिया है। बताओ किसको याद है? रोज मुरली सुनते हो? रोज सुनते हो तो आज टेस्ट हो जाएगा। बहुत अच्छी बात बाबा ने कही है, अगर वो चीज हम ध्यान पर रख लेते हैं तो भूलने अभूलने का प्रश्न ही नहीं है। कौन सी बात है? बाबा कहते हैं बच्चे जो कुछ होता है उसको पॉजिटिव करके समा लो। कोई गड़बड़ बात होती है, हर्जा नहीं, उसमें पॉजिटिव क्या है वो देख करके उसे समा लो। जैसे सागर में कोई चीज डाली जाती है तो समाई जाती है, समा जाती है, कहां चली गई पता नहीं लगता। ऐसे बाबा ने हमको मास्टर सागर बनाया। बात होती है उसमें मैंने क्या सीखा, पॉजिटिव क्या रहा, वो लेकर के उसको समा देंगे तो वो चीज आपको तंग नहीं करेगी, क्योंकि पॉजिटिव है तो आप परेशान नहीं होंगे। लेकिन जब आप उसको वैसे का वैसा डाल देते हो तो वो बार बार उछल खाती है, क्योंकि समाधान मिला नहीं है तो बार बार इमर्ज होती है। तब हम कहते हैं कि तुमने इतने साल पहले जो बात कही थी ना वो भी मुझे याद है, तुमने जो व्यवहार मेरे साथ किया था ना वो भी मुझे याद है। इसलिए ये एक चीज हम ध्यान पे रखेंगे तो जो बीत चुका वो हमें डिस्टर्ब नहीं करेगा। अब आओ, नथिंग न्यू, कहने में तो बड़ा सरल शब्द है नथिंग न्यू। कल्प पहले भी हुआ था, अब भी हो रहा है, फिर भी होगा। हे अर्जुन, मैं तुम और ये राजाएं पहले भी थे, अब भी हैं, फिर भी होंगे, नथिंग न्यू। ये नथिंग न्यू करने की शक्ति है। बाबा ने एक मुरली में कहा, महान पुरुषार्थी कहो, महारथी कहो, महारथी कभी भी किसी भी दृश्य को, परिस्थिति को आश्चर्य से नहीं देखेगा। समझ आई बात? आश्चर्य से नहीं देखेगा ये क्या हो गया, नहीं, उसको कल्प पहले वाली स्मृति आती है, पहले भी हुआ था, जीता था, अब भी जीतना है। अब ये स्मृति, उससे हमको कोई भी बात नई नहीं लगेगी, पहले हो चुकी है। नई बात तब लगती है जब कोई अनहोनी बात हो, वो तो है नहीं, पहले भी हो चुकी है, नथिंग न्यू। तो ये धारणा, ये स्मृति आपको लानी नहीं पड़ेगी, महसूस होगा ये हुआ है, अब मैं फिर से कर रही हूं, रिपीट कर रही हूं, जो हो चुका उस समय भी तो हमने कुछ किया था, कल्प जीता था, पूरे कल्प में हम चले, फिर से कुछ तो किया था, बात कंप्लीट हुई थी। इसमें बाबा कहता है नथिंग न्यू का स्टॉप तब लग सकता है जब आप अपनी स्थिति को ऊंचा उठा लेते, जब परिस्थिति बाहर की बहुत कठिन है, बहुत बड़ी है, तो आपको क्या करना होगा, परिस्थिति से ज्यादा शक्तिशाली बनना होगा, या परिस्थिति के गुलाम बनना होगा। परिस्थिति आई है, आती है, कलयुग की दुनिया है, हमारे हिसाब किताब है, पूरा अंत का समय है, परिस्थितियां आती हैं, परीक्षाएं आती हैं, पेपर आते हैं, ये सब होता है, परंतु आप इसको जीतेंगे कब, जब आप अपने आप को उस परिस्थिति से ऊंचा उठाएंगे, उस परिस्थिति से स्वयं को शक्तिशाली बनाएंगे। हम सब मिसाल देते हैं कि एरोप्लेन से नीचे देखो तो बड़ी बड़ी नदी क्या लगती है, जैसे कोई धारा है, बड़े बड़े कारखाने क्या लगते हैं, जैसे छोटा सा मॉडल है कोई, ऐसा दिखता है ना। ऐसे जब हम अपने स्वमन ऊंचे उठ जाते हैं कि मैं कल्प कल्प की विजयी आत्मा हूं, कल्प पहले भी विजय प्राप्त की थी और अब भी करके रहूंगी, तो जब हमारे अंदर ये आता है मैं कल्प कल्प की विजयी हूं, तो परिस्थिति हमको छोटी नजर आती, अपने स्वमान को उठा। दूसरी बात, दो शब्द याद रखिए जिससे नथिंग न्यू का पाठ पक्का होगा, वो दो शब्द कौन से हैं, साक्षी और त्रिकालदर्शी। साक्षी होकर के पाठ को देखना है, त्रिकालदर्शी होकर के आद मध्य अंत को जान करके। ऐसे तो नहीं है कोई बात हुई है तो कभी खत्म नहीं होगी, खत्म करने का तरीका है, वो तरीका आपका टॉपिक का दूसरा भाग है जो मैं थोड़ी देर में लूंगी। जब त्रिकालदर्शिता आती है, साक्षेपण आता है, तो नथिंग न्यू की ब्रेक लगाना आसान लगता है। ठीक है, ठीक है। चौथी बात, बाबा कहते हैं अपने आप को करण करावन हार के हाथ की कठपुतली समझो। कराने वाला करा रहा है और मैं उसके डायरेक्शन प्रमाण कर रही हूं। तो जब कराने वाला करा रहा है और मैं कर रही हूं, तो इसमें डिटैचमेंट होती है, अनासक्त वृत्ति होती है। और जो अनासक्त वृत्ति होती है, बाबा कहते हैं वो आपको वो शक्ति देती है जिससे आप सिद्धि स्वरूप बनते हैं। सिद्धि स्वरूप उसको कहते हैं जो आप करना चाहें, जो आप इच्छा रखें वो आप प्राप्त कर लें। जो सामने वाला आपके सामने आए कोई इच्छा लेके, आप उसको पूरा कर सकें, उसको कहते सिद्धि स्वरूप। तो जब हम अपने आप को निमित्त समझते हैं, जब हम अपने आप को समझते हैं मैं बाबा के हाथ की कठपुतली हूं, तो बाबा हमारे मुख से वही बोल बुलवाएंगे, वही कर्म कराएंगे जो मेरे हितकारी होंगे, मेरे कल्याणकारी होंगे और जो सिद्ध होने वाले होंगे। क्योंकि अगर मैंपन रहता है, मेरा पन रहता है, तो हम ये उछाल नहीं लगा सकते। बाबा के हाथों में स्वयं को सौंप दो। कराने वाला करा रहा है, ये सिद्धि स्वरूप बनने के लिए युक्ति है। बाबा कहते हैं बच्चे तुम किस दुनिया में रह रहे हो, देखो तो सही। इस दुनिया में आग ही आग है, इस दुनिया की कौन सी चीज तुमको अच्छी लगती है? अच्छी लगती है दुनिया? कौन सी चीज तुमको इस दुनिया की अच्छी लगती है? बाबा ने चार प्रकार की आग बताई। आग लगी हुई है चारों तरफ। अगर आग को देख करके भी वैराग नहीं आता, वैराग्य वृत्ति मेरी नहीं बनती, तो क्या समझूं? क्या मैं सतयुगी दुनिया में जाने लायक हूं? कौन है जो इसी दुनिया में रहना चाहता है? वो हाथ खड़े करो। कोई नहीं? हाँ, जो रहना चाहते हैं हाथ खड़े करो, खड़े हो जाओ। जो इस दुनिया में रहना चाहते हैं, इस दुनिया में, माता ने समझा नहीं होगा, कौन रहना चाहता है इस दुनिया में? चारों तरफ आप नजर दौड़ाओ, बाबा ने चार प्रकार की आग बताई। पहला नंबर बात विनाश ज्वाला, दिखाई दे रही है विनाश ज्वाला चारों ओर। विनाश काली विपरीत बुद्धि नजर आ रही है या नहीं? हां जी या न जी? हां जी। चारों ओर विनाश के बादल मंडरा रहे हैं। कब, किस समय, किसके साथ, क्या हो, कोई भरोसा नहीं। ये मत समझना कि विनाश केवल लड़ाई के द्वारा होता है, विनाश प्रकृति के द्वारा भी होता है, विनाश पारस्परिक झगड़ों के द्वारा भी होता है, विनाश नीति और चरित्र की समाप्ति के कारण भी होता है, विनाश विकारों के कारण होता है। केवल युद्ध नहीं सोचना, युद्ध से तो होता ही होता है, परंतु और भी अनेक कारण हैं, प्रकृति के द्वारा भी होता है। तो क्या हमें चारों ओर ये दिखाई दे रहा है कि विनाश की ज्वाला लगी हुई है, या सोचते अभी तो कुछ दिखता नहीं? हम बच्चे थे तो हम लोग डायलॉग करते थे, अरे पढ़ करके क्या करना है, दुनिया विनाश के कगार पर है, एटम बमों की ढेर पर है। कब की बात कर रहे हो? 1958, आज से 65 साल पहले, 66 साल पहले हम छोटे छोटे होते, डायलॉग ड्रामा करते थे। हुआ तो कुछ भी नहीं, दुनिया तो जिंदी है, चल रही है, चल रही है। अब कई माताएं चुप हो गई। नहीं माताओं, मैं आपको ये बात बताना चाहती हूं, ये मत समझना विनाश नहीं हो। जिस दिन से बाबा आए हैं, बाबा ने बताया, उस दिन से विनाश शुरू हो गया, स्थापना भी शुरू हुई है, विनाश भी शुरू हो गया। एक प्रश्न आपसे पूछती हूं, ये बताओ आज मनोबल लोगों में है, नैतिक बल है, चारित्रिक बल है, है? पारस्परिक प्रेम का बल है, सहयोग का बल है, शुभ भावनाओं का बल है? जब ये नहीं है तो इस दुनिया को तो दीमक लगी हुई है। बिल्डिंग होती है बड़ी, उसको गिराना होता है तो बुलडोजर लाते हैं, लेकिन अगर कोई पुराना खंडर है, पुरानी दुनिया है, पुरानी बिल्डिंग है, उसको दीमक लग जाती है तो उसको गिराना मुश्किल नहीं होता। आप भी जोर से धक्का मारेंगे ना, दीवार नीचे आ जाएगी, खोखला हो जाता है। तो आज की दुनिया इतनी खोखली हो चुकी है, जरा सा धक्का लगा और गई, तैयार है। ये नहीं समझना है कि विनाश नहीं हुआ, ऑलरेडी चल रहा है, मेरा ऐसा मानना। विनाश की डेट की प्रतीक्षा नहीं करनी, विनाश चल रहा है। तो बाबा ने कहा एक है विनाश की ज्वाला, दूसरी है विकारों की आग। विनाश की ज्वाला से बचने का साधन है निर्भयता। विनाश हमको भयभीत न करे, विनाश हम पर हावी ना हो, वो साधन है निर्भयता। और निर्भयता तब आती है जब हम आत्मिक स्थिति का अभ्यास करते हैं। आत्मा न जलती है, न कटती है, न मरती है, न भीगती है, कुछ नहीं, ना डूबती है, कुछ नहीं। विनाश की ज्वाला फेस तो करनी है ना, उसका साधन है निर्भयता। दूसरा, विकारों की आग, इससे बचने का साधन क्या है? अपने आदि और अनादि संस्कारों को याद करो। आदि में हम क्या थे? देवता। अनादि स्वरूप क्या है हमारा? निराकारी। जब मेरे ये गुण हैं, आदि अनादि मेरे संस्कार हैं, तो विकार कहां से आए? कहां से आए? जब मैं अपने आदि अनादि संस्कारों को भूलती हूं, तब ये विकारों की आग दिखाई देती है। फिर चलो, तीसरी आग बाबा ने बताई, दे दे के संबंध। दे दे के संबंध। आज हमारे बीच में ईर्ष्या, आज हमारे आपस में संबंधों का खराब होना, दूरी होना, एक दूसरे से दूर दूर हो जाना, ये सब क्या है? कौन सुखी है बताओ? इन सब बातों के होते हुए कौन सुखी है? बेशक मेरे परिवार में लड़ाई झगड़े हो, शत्रुता हो, बाप बेटे का मुख ना देखना चाहे, बेटा बाप का मुख ना देखना चाहे, कौन सुखी है? क्या यह कमजोरी की आग, संबंधों की दूरियों की आग प्रभाव नहीं डालती? डालती है ना। हम अकेले नहीं हैं, हम अकेले नहीं हैं, हम सामाजिक प्राणी हैं, समाज में रहते हैं। अपने ही लोगों से हम मुलाकात न कर सके तो बाबा कहता है, क्या ये आग नहीं है? कोरोना के टाइम पर क्या हुआ? बाप एक फ्लोर पर, बेटा दूसरे फ्लोर पर, मिल भी नहीं सकते। मां ने शरीर छोड़ दिया, आपस में रो भी नहीं सकते। कोरोना में यही हुआ ना। बाबा ने कहा हुआ है, अंत में वो समय आएगा बच्चे, जो तुम्हारे को आग देने वाला कोई नहीं होगा। आप सब जानते हो कोरोना में क्या हुआ, सारी लाशें इकट्ठी करके केरोसिन डाल करके खत्म की। याद है या भूल गए हो? याद है ना। तो वो दुनिया, दे दे के संबंधों ने क्या कर लिया? कोई किसी से मिलके राजी नहीं था। भई आप अपने घर रहो, दूर रहो, कोई मिलकर राजी था? कोई राजी? इसलिए बाबा कहता है कि अगर समझदारी से उस आग को जीतो, वो आग कैसे जीतेंगे? दे दे के संबंधों को जीतने का साधन है। बाबा को अपना संसार बनाओ। यूं तो हम क्या कहते हैं, बाबा तू ही मेरा संसार है, गीत भी गाते हैं तू ही मेरा संसार है, और वैसे देखने में इतना बड़ा संसार मुझे नजर आता है, कोई भूले नहीं। जीतना है, ये आग भी बुझानी है। आप कहेंगे इसका अर्थ है कि हम अपने संबंधों को भूल जाएं, छोड़ दें? बाबा ने ये नहीं कहा। बाबा ने कहा तुम मुझे अपना संसार बनाओ। जब बाबा को अपना संसार बनाते हैं तो वह रिश्ते जिनका सुख मुझे मिलता है वो सबसे मैं संतुष्ट हो जाती हूं। जैसे बाप और बेटे का संबंध, मां बेटे का संबंध, युगल का संबंध, भाई का संबंध, ये सब संबंध जब हम बाबा संसार में अनुभव करते हैं तो हमें दूसरे की तो आवश्यकता ही नहीं पड़ती ना। तो वो रहेंगे हमारे साथ, जाएंगे कहीं नहीं, परंतु कैसे रहेंगे? जैसे कमल का फूल कीचड़ में रहता न्यारा प्यारा, चौथी आग पदार्थों की ममता की आग है, पदार्थों की ममता की आग। मेरे पास ये भी होना चाहिए, ये भी होना चाहिए, ये भी होना चाहिए, इससे वैराग वृत्ति आएगी। तब बाबा कहते हैं साधन और साधना दोनों का बैलेंस रखो। अब उदाहरण के रूप से मोबाइल है आपके पास, आपका काम एक छोटे मोबाइल से चलता है, हम सबका चलता है। हाँ, कोई ऑफिस जाने वाले हैं उनको चाहिए स्मार्टफोन, मुझे क्यों चाहिए? मुझे क्यों चाहिए? स्मार्टफोन चाहिए, एप्पल का चाहिए, क्यों चाहिए भाई? जो लोग ऑफिस का काम करते हैं चलो उनके लिए तो ठीक है, ये ममता चेक करो माताएं, ये पदार्थों की ममता। कोई माताएं होती है ना, वो क्या करती हैं, कोई चीज होगी भाई इसको फेंक दो ना, नहीं नहीं भाई इसको रख दो जरा कभी काम में आएगी, आई वेल में काम में आएगी। तो बाबा कहता है कि बच्चे ये जो ममता है इसका त्याग करना है, और उसके त्याग के लिए क्या करो, बैलेंस, साधन और साधना का बैलेंस रखो। फिर चलो आगे, बाबा ने बच्चों को जब भेजा सेवा पर तो बाबा ने स्पष्ट कहा, बच्चे तुम जा रहे हो सेवा पर, याद रखना तुम्हें बहुत सत्कार मिलेगा, बहुत सम्मान मिलेगा, लेकिन तुमने वह स्वीकार नहीं करना है। ठीक है बहनों? ठीक है? सत्कार मिलता है, टीचर्स बहनों को सत्कार तो मिलता है, सम्मान भी बहुत मिलता है, सम्मान भी बहुत मिलता है, लेकिन तुम उसको स्वीकार नहीं करना। स्वीकार करने से राग उत्पन्न होता है, जो वैराग का विलोम है। राग और द्वेष दो चीजें हैं, या तो राग होगा या द्वेष होगा, लेकिन बाबा हम बच्चों को दोनों से न्यारा करता है, राग और द्वेष दोनों से न्यारा करता है। अगर हम द्वेष रखते हैं तो भी वो शक्ति नहीं आ सकती, वैराग्य वृत्ति नहीं बन सकती। आपको बारंबार बारंबार वो आत्मा याद आती रहेगी तो वो काम तो नहीं होगा ना। फिर चलो, बाबा ने कहा कि तुम्हारी सेवाओं का विस्तार, वो भी बेहद की वैराग्य वृत्ति से होगा। दादियों का देख लो, दादियां जब सेवा पर निकली तो दादियां अपने साथ क्या ले गए? हृदय पुष्पा दादी को बाबा ने एक जोड़ी पहनी है, एक जोड़ी का थैला दिया, 5 रुपए दिए और कहा जाके सेंटर बनाओ। कहां भेजा उनको? बेंगलोर, माउंट आबू से बेंगलोर। और अंग्रेजी, बेंगलोर में अंग्रेजी है और दादी को तो अंग्रेजी आती नहीं थी, परंतु बाबा ने भेजा है तो दादी के मुख से इतनी फ्लुएंट इंग्लिश निकलती थी जो सामने वाले सब जान पहचान जाते थे, सब समझ जाते थे। आज हमारे करुणा भाई एक मिसाल है यज्ञ में। उस समय की जो दादी की वो थी, उससे उनका जन्म हुआ, वैराग वृत्ति से जन्म हुआ। दादियों ने कुछ भी अपना नहीं समझा। ब्रह्मा बाबा को देखो ना, ब्रह्मा बाबा ने तन बाबा को दिया तो क्या कहता है? ये तन बाबा का रथ है, मेरा नहीं है, बाबा का रथ है। मन तो पहले लगा हुआ था, मन मना भाव था, धन कभी अपने लिए खर्च नहीं किया। माताएं गोपियां बहुत कुछ बाबा के लिए लाती थी, बाबा कभी बाबा की आंख नहीं डूबी, कभी बाबा ने एक टुकड़ा भी अपने लिए यूज नहीं किया। जो धन था वो धन भी समर्पण किया, माताओं बहनों का ट्रस्ट बनाया, उसमें समर्पण किया। और धन को, आपको पता हो, बाबा ने कभी भी धन को हाथ नहीं लगाया। एक बार बाबा को समर्पण किया, दोबारा बाबा ने पैसे को हाथ नहीं लगाया। परिवार बाबा का है, बेटे को पैसा चाहिए, बाबा ने कहा मेरे पास तो नहीं है, मैं तो सब दे चुका। तो बाबा की बुद्धि में हीरे जवाहरात जब वैराग आया, हीरे जवाहरात पत्थर नजर आते थे। और कमाल की बात यह है, आजकल पत्थर हमको हीरे जवाहरात नजर आते हैं। कहीं जाएंगे समुद्र के किनारे, अच्छा पत्थर नजर आएगा, उसको उठा के ले आएंगे, लाके सजाएंगे। कितना अंतर है। तो वैराग वृत्ति हमारी केवल मधुबन में बैठ करके ही है या वहां पर भी है घर गृहस्थ में? जवाब दो। अब सब चुप हो गए। इसको बाबा कहता है अल्पकालिक शमशानी वैराग। वैराग्य से वायुमंडल शुद्ध होगा, वैराग्य से सेवा में वृद्धि होगी, वैराग्य से साक्षात्कार मुहूर्त बनेंगे। ये वैराग्य चाहिए। वैराग का अर्थ ये नहीं है आप अपना घर छोड़ दो, अच्छे कपड़े छोड़ दो, ये अर्थ नहीं है। लेकिन मेरी नजर न डूबे, मुझे कुछ भी इस दुनिया का आकर्षित न करे, उसको कहते हैं वैराग। मम्मा का मिसाल है, रमेश भाई उनको ड्राइव करके ले जा रहे थे। मम्मा को कहा, मम्मा वो बोर्ड देखा? तो मम्मा का उत्तर क्या था? मम्मा इस पुरानी दुनिया की कोई चीज नहीं देखती, हम तो टूर पर जाते हैं खास देखने के लिए। अंतर है ना। ये रियलाइजेशन हमें करनी है। वैराग माना वैराग। हमें फोन से भी राग है, स्मार्टफोन चाहिए, है या नहीं है? बताओ, सच सच बताना है ना। फिर और चलो, हमें इस दुनिया की कोई चीजें तो अच्छी लगती हैं। कश्मीर घूमने जाएंगे, गोवा जाएंगे, ठीक बात है, जाओ घूमो फिरो, लेकिन अपने अंदर को चेक करो। मैं एक सवाल पूछ लेती हूं, सच सच ईमानदारी से बताना। जो माताएं सीरियल देखती हैं, फिल्म देखती हैं, वो हाथ तो खड़े करो, ऊंचे हाथ खड़े करो, डरो नहीं, शर्माओ नहीं, खड़े करो, हाथ हिलाओ तो मैं देखूं। बहुत हाथ हिल रहे हैं भाई हमारी सभा। अब मुझे ये बता दो, जिस समय सीरियल देखते हो, फिल्म देखते हो, वैराग वृत्ति रहती है? हाँ जी हाँ। उस समय तो लगता है अरे बड़ा अच्छा डायलॉग बोला इसने, बड़ी अच्छी एक्टिंग हो रही है, बड़ी शिक्षा अच्छी दे रहे हैं। तो अब बोलो, नेमी नाथ हो या प्रेमी नाथ, कौन हो? हाँ, नेमी नाथ हो, योग में बैठेंगे, बाबा आप मेरे साजन हो, आप मेरे सतगुरु हो, आप मेरे ये हो, फिर आई एक मेनका और तपस्या भंग। माताओं चेक करो, क्यों कहती हूं, माताओं में बहुत शक्ति होती है। माताएं जो चाहे सो कर सकती हैं। हाँ, आज सारे विश्व में अगर कोई संस्था है जिसमें इतनी माताएं पवित्रता के व्रत को धारण करके अपने जीवन को श्रेष्ठ बना रही हैं, तो वो ये ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय। अब ये बताओ, जहां तक हमने दौड़ लगाई वो काफी है या आगे भी जाना है? आगे जाना है ना। तो आज क्लास के बाद हर एक अपने आप से प्रॉमिस करना कि आप अपने को आगे बढ़ाने के लिए क्या संकल्प करेंगे। ठीक है, पक्का? चलो और आगे चलो। अब माताएं परेशान भी होती हैं, क्यों? बाबा आपकी सारी गुत्थियां आज खोलेगा। बाबा कहता है माताओं को इच्छाएं बहुत होती हैं। ठीक कह रही हूं? क्या इच्छा होती है? बेटे की नौकरी लग जाए, एक बहू आ जाए, बस उसके बाद एक संतान हो जाए। स्वर्ग में एक सीट खाली है। माताएं सुन रहे हो? स्वर्ग में एक सीट खाली है। वो नाटक चलता था, वो एक सीट के लिए कोई तैयार नहीं होता था। याद है, सन्यासी के पास गए तो उसने क्या कहा? अरे अभी अभी तो मैंने नया आश्रम बनाया है, इसको थोड़ा बढ़ने दो, थोड़ा अखाड़ा अच्छा बन जाए उसके बाद। एक युवक के पास गए, अरे मेरे पास क्यों आया, अभी तो मैं छोटी आयु का हूं, अभी तो मेरे को पढ़ना लिखना है, नौकरी करनी है, बहुत कुछ करना है। अच्छा, उसने कहा ठीक है, मैं बूढ़ी माता के पास चलता हूं। बूढ़ी माता के पास गया, तू मेरे पीछे क्यों पड़ा है, मेरे पास क्यों आया? अभी तो मेरी एक इच्छा है, मैं इन आंखों से पोते को सोने के कटोरे में दूध पीता हुआ देखना चाहती हूं, उसके बाद चलूंगी। तो स्वर्ग की वो सीट तो खाली हो गई, खत्म हो गई। आपका क्या हाल है? क्या हाल है? स्वर्ग में एक सीट नहीं, अभी सारी सीटें खाली है। स्वर्ग में सारी सीटें खाली हैं। कौन चलने को तैयार है, अच्छी तरह से जवाब देना। अच्छा ठीक है, बाबा आपका फोटो खींच रहा है, खींच रहा है। तो बाबा कहते हैं कि देखो बच्चे, ये जो इच्छाएं हैं इनके ऊपर अटेंशन दो। हमारा एक लक्ष्य है इच्छा मात्रम अविद्या। सत्युग में हम इच्छा मात्रम अविद्या होंगे, लेकिन अगर अभी बहुत सारी इच्छाएं होंगी तो बाबा के महावाक्य क्या है, इच्छा अच्छा बनने नहीं देती। यही है ना। और बाबा ने यह भी कहा कि इसको वैराग्य वृत्ति आपकी मानसिक होनी चाहिए, मन से। बाहर से छोड़ो ना छोड़ो, बाहर से बेशक ऐश आराम में रहो, कोई हर्जा नहीं है।
शिव पिता को अब याद करो, मुक्ति धाम तुम्हें जाना है। अपने सुकर्मों के बलदार ही सतयुग में तुमको आना है। शिव पिता को अब याद करो।
बाबा कहते हैं वैराग वृत्ति आपकी मानसिक दृष्टि से कृति से, मानसिक माना मन से, अर्थात एक बार जिस चीज को समझ लिया वो वापस मेरे मन में घर ना करे, चाहे वो पदार्थ है चाहे वो व्यक्ति है चाहे संबंध है। एक बार समझ लिया कि मुझसे इनसे वैराग लेना है तो वापस मेरे घर में ना आए। दृष्टि देखते हुए भी नहीं देखना है। कृति उपराम अवस्था। उपराम सब कुछ करेंगे लेकिन जैसे पका हुआ फल होता है वो वृक्ष के साथ जुड़ा होता है लेकिन उतने तक जुड़ा रहता है जब तक उसको उसका सहारा चाहिए पकने में, पका और खत्म हो जाता है और इतना ही हमारी उपराम वृत्ति स्ट्रांग होनी चाहिए। अगर ये होगा तब बाबा कहता है बच्चे प्रत्यक्षता हो सकेगी। प्रत्यक्षता क्यों रुकी है? हम सब कहते हैं प्रत्यक्षता क्यों नहीं होती, प्रत्यक्षता क्यों रुकी है? उसके कारण है, बाबा ने जो शब्द कहे वो मैं बताती हूं। चारों ओर चाहे पाप कर्म, चाहे भ्रष्टाचार, चाहे बातों में, पोजीशन में वैराग्य वृत्ति नहीं है। चाहे पोजीशन है, चाहे संबंध है, चाहे बातें हैं, पाप कर्म करने से भी वैराग्य नहीं आया है। पाप कर्म कर लेते हैं। अब पाप कर्म क्या है उसकी बड़ी फिलॉसफी है। किसी को दुख देना, वाणी से क्रोध करना, कष्ट देना, अशुभ सोचना, अकल्याणकारी सोचना, ये सब पाप कर्मों के खाते में जाता है। तो पाप कर्मों से वैराग्य वृत्ति नहीं आई है। अगर पाप कर्म से वैराग्य वृत्ति हो, हमसे कभी पाप होगा नहीं। दूसरा, भ्रष्टाचार। दुनिया में क्या हालत है? वैराग्य, भ्रष्टाचार से वैराग्य आए। वे चीजें, वे बातें जो मर्यादा अनुकूल नहीं है, उनसे दिल का वैराग्य, भ्रष्टाचार उसको कहते हैं, भ्रष्ट आचरण। भ्रष्ट आचरण, वो भ्रष्ट आचरण क्या है वो आप सब सोच सकते हो। दिल का वैराग्य। और तीसरा, बाबा ने कहा बातों में, वार्ताओं में, चर्चाओं में हम कितने प्रेम से पार्टिसिपेट करते हैं। कहीं किसी की कोई बात हो रही होगी, अरे मेरे को भी तो सुना दो ना, तुम्हारे मतलब की नहीं, अच्छा आपके मतलब की, मेरे मतलब की नहीं है। ये दिल का वैराग्य चाहिए। मेरे काम की नहीं है तो नहीं है। फिर चलो आगे, बाबा कहते हैं पोजीशन। बुरा नहीं मानना माता है, मुझे नहीं पता आप सबका क्या हाल है, लेकिन दुनिया में पोजीशन, मैं सासू हूं, मैं जेठानी हूं, मैं नंद हूं, कॉन्शियसनेस तो रहती है, मैं बड़ी हूं, मुझसे पूछा नहीं गया, मेरे से क्यों नहीं कहा गया, ठीक है, इन सबसे वैराग्य। ये सूक्ष्म सूक्ष्म वे कीटाणु हैं जो वैराग्य केवल मीठा नहीं होता, हमारे इन चीजों से वैराग्य वो भी तो चाहिए, उनको थोड़ी रखना हमने। जब दिल से वैराग आएगा इन चीजों का, फिर विनाश। माताएं मानते हो ये बात? मानते हो? दिल से वैराग तो खत्म हो जाएगा। माताओं के अंदर वो मनोबल होता है, माताएं जो चाहे सो कर सकती, आपके अंदर ताकत होती है। आज आपने इस क्लास के बाद अपने आप को देखते हुए निश्चित करना है, आज से मैं किन बातों में इंप्रूवमेंट लाऊंगी, किन बातों में मैं प्रोग्रेस करूंगी। ठीक है, बाबा ने कहा देखो बच्चे, समय आपका शिक्षक नहीं बनना चाहिए, समय आपकी रचना है। अगर समय शिक्षक बनेगा तो समय को नंबर मिलेंगे, वो सतो प्रधान बन जाएगा, आप कहां रह जाओगे, आप पीछे रह जाओगे ना। इसलिए समय को शिक्षक नहीं बनने दो। बाबा ने अपना तन मन धन जन, आप देखो ब्रह्मा बाबा ने जब शरीर का त्याग किया है, बाबा के सामने दादी भी थी, सबको ही थे, लेकिन बाबा किसी में अटका? अभी हम बुरा नहीं मानना, वैराग्य की कमी के कारण न हम फरिश्ता बन सकते हैं, न हम ऊंच क्वालिटी के योगी बन सकते हैं। अभी हम हैं उठता बैठता योगी, बनना है उड़ता योगी। उठता बैठता किसको कहती हूं, थोड़ी देर हुआ उस बाद फिर बैठ, फिर थोड़ी जागृति आई फिर उठे फिर बैठ, पहुंच सकेंगे मंजिल पर उठते बैठते के हिसाब से। क्या चाहिए? उड़ता, उड़ता पंछी चाहिए। मंजूर है आपको उड़ता पंछी, उड़ता योगी मंजूर है? बाबा ने कहा वो लोग तो दुनिया में लोग अपने शरीर को उठाते हैं, लेविटेशन करते हैं ना, शरीर को उठाते हैं, तुमको शरीर को नहीं उठाना है, स्थिति को उठाना है। अब जो वैरागी होगा, बेहद का वैरागी, उसकी निशानियां क्या होंगी? पहला, बे से बेघर होगा, दे भी मेरी नहीं है, बेघर। दूसरा, संस्कार स्वभाव, ये संसार साधन इसके वशीभूत नहीं होंगे। तीसरा, न्यारा बन मालिक बन साधना द्वारा सिद्धि स्वरूप बनेंगे। साधना को विधि बनाएंगे, साधना साधना को विधि बनाएंगे। विधि द्वारा स्व उन्नति करेंगे। साधना मेरे जीवन की विधि है, उस विधि द्वारा उन्नति करेंगे। निमित्त आधार होगा, निमित्त, परंतु अधीन नहीं होंगे। अधीन अर्थात वशीभूत। विकारों की अग्नि से दूर। साधनों से न्यारे, अल्पकाल के बहाव चल पड़ती है ना कोई लहर चल पड़ती है, अल्पकाल के बहाव आकर्षित नहीं करेंगे। निस्वार्थ भाव होगा, अपनापन नहीं होगा, ये मेरा अपना, ये मेरी चीज, ये मेरा, ये कुछ नहीं होगा। उसकी जगह क्या होगा? बाबा ने बहुत अच्छा कहा, अपनापन की जगह होगा बाबापन। बाबापन हर बात में, बाबा बाबा बाबा। तो माताएं, जब हमारी अवस्था अच्छी होगी, हम शक्तिशाली होंगे, तो नथिंग न्यू की ब्रेक लग सकती है। आप कितना ही किसी को कह रहे नथिंग न्यू, पहले भी हुआ था, और घबराएगा, शक्तिहीन होगा। लेकिन शक्तिशाली स्वयं को बना करके फिर ये ब्रेक हमारी लग सकती है। ठीक है, वैराग्य हमारी पुरुषार्थ का पहला कदम है, ब्राह्मण लाइफ का पहला कदम पुरुषार्थ का वैराग्य है। जब आपको वैराग्य आता है, तब आप पवित्रता की धारणा में आते हैं, तब आप ब्राह्मण कहलाते हैं, उसके पहले नहीं। ये वैराग्य हमारा कायम रहे, ये वैराग्य टूटना नहीं चाहिए, कायम रहना चाहिए। मंजूर मंजूर माता मंजूर है? हाँ, कठिन तो नहीं है? सरल योगी, सहज योगी, बेहद के वैरागी, पक्का पक्का। अभी हम याद में बैठेंगे और मन ही मन आप बाबा को वायदा करो, जो भी बातें आपको आकर्षित करती हैं, जो बातें आपको पकड़ के रखती हैं, बाबा आज मैं उनको समर्पित कर इनसे वैराग्य ले रही हूं। वैराग्य दिल से समर्पण। ठीक है, 10 मिनट बाबा की याद। विषय क्लियर हुआ सबको? विषय क्लियर हुआ? ठीक, ओके, ओम शांति।
आप मिले मिट गई मन की सभी चाह, आप मिले मिट गई मन की सभी चाह, खुशियों के गीत मिले मिटी आह आह, प्यास बुझी पाए हैं सागर अथा, प्यास बुझी पाए हैं सागर अथा, वाह बाबा वाह वाह बाबा वाह वाह बाबा वाह वाह बाबा वाह बनाई है माला नैनों में अपने है हमको संभाला चुन चुन के मोती बनाई है माला नैनों में अपने है हमको संभाला पलकों में प्रभु के है पाए पन्हा पलकों में प्रभु के है पाए पन्हा वाह बाबा वाह वाह बाबा वाह वाह बाबा वाह वाह बाबा वाह
Thank you.
निर्बल को आकर के शक्ति बनाया, निर्धन को तख्त और ताज दिलाया। निर्बल को आकर के शक्ति बनाया, निर्धन को तख्त और ताज दिलाया। स्वर्ग का बनाते हैं हमें बादशाह, स्वर्ग का बनाते हैं हमें बादशाह। वाह बाबा वाह, वाह बाबा वाह, वाह बाबा वाह, वाह बाबा वाह। स्वर्गिक बहारों के सुख सारे पाए, हो यादों की बाहों में हमको समाए, स्वर्गिक बहारों के सुख सारे पाए। हर दिस तारों से जीवन की राह, हर दिस तारों से जीवन की राह। वाह बाबा वाह, वाह बाबा वाह, वाह बाबा वाह, वाह बाबा वाह। आप मिले मिट गई मन की सभी चाह, आप मिले मिट गई मन की सभी चाह। खुशियों के गीत मिले मिटी आह आह, प्यास बुझी पाए है सागर अथा, प्यास बुझी पाए है सागर अथा। वाह बाबा वाह, वाह बाबा वाह, वाह बाबा वाह, वाह बाबा वाह।